भोगाईश्वया प्रसक्तानां धया पाहृत जाते व्यवसायात्मका बुद्धिर समाधो नवदीयते। That those who are too much attached to material opulence and sense gratification.
Lolupayo padishen. Nagriharu dhachetase. Nabhaktaya chamechatu. Namad bhaktad visham api.
Lord Kapila continued, "This instruction is not meant for the envious, for the agnostics, or for persons who are unclean in their behavior, nor is it for hypocrites, or for persons who are proud of material possessions. It is not to be instructed to persons who are too greedy and too attached to family life, nor to persons who are non-devotees and who are envious of the devotees and of the personality of Godhead." Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
अनुवाद। यह उपदेश न तो उन लोगों को दिया जाए जो अत्यंत लालची अत्यधिक आसक्त हैं, न ही अभक्तों और भगवान के प्रति ईर्ष्या रखने वालों को दिया जाए।
Persons who are always planning to do harm to other living entities are not eligible to understand Krishna consciousness and cannot enter into the realm of transcendental loving service to the Lord.
जो लोग सदैव अन्य जीवों की हानि पहुंचाने की योजनाएं बनाते रहते हैं, वे कृष्ण भक्ति को समझने के अधिकारी नहीं हैं और वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकते।
Also, there are so-called disciples who become submissive to a spiritual master most artificially with an ulterior motive.
साथ ही कुछ ऐसे स्वार्थी शिष्य होते हैं जो अत्यंत कृत्रिम रूप से गुरु के प्रति विनित बने रहते हैं।
They also cannot understand what Krishna consciousness or devotional service is.
वे भी ये नहीं जान पाते कि कृष्ण भावना या कृष्ण भक्ति क्या है।
Persons who, due to being initiated by another sect or of religious faith, do not find devotional service is on the platform for approaching the Supreme Personality of Godhead.
ऐसे व्यक्ति जो अन्य संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण भक्ति को भगवान तक पहुंचने का एक सा पद नहीं समझते, वे भी कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकते।
They also cannot understand Krishna consciousness.
वे भी कृष्ण भावना को नहीं समझ सकते।
We have experience that some students come to join us, but because of being biased in some particular type of faith, they leave our camp and become lost in the wilderness.
हमारा भी ऐसा अनुभव है कि कुछ विद्यार्थी हमारे पास आते हैं, किंतु विशेष प्रकार का मताग्रह होने के कारण वे हमारा साथ छोड़कर वीराने में खो जाते हैं।
Actually, Krishna consciousness is not a sectarian religious faith. It is a teaching process for understanding the Supreme Lord and our relationship with Him.
वास्तविक कृष्ण भक्ति किसी सांप्रदायिक विशेष का नहीं है, यह तो भगवान और उनके साथ संबंध को जानने की पद्धति है।
Anyone can join this movement without prejudice.
कोई भी व्यक्ति इस आंदोलन में सम्मिलित हो सकता है।
But unfortunately, there are persons who feel differently.
किंतु दुर्भाग्यवश कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अलग विचारधारा है।
It is better, therefore, not to instruct the science of Krishna consciousness to such persons.
इसलिए ज्यादा अच्छा यह है कि ऐसे व्यक्ति को कृष्ण भावना की शिक्षा नहीं प्रदान करना।
Generally, materialistic persons are after some name, fame, and material gain.
साधारणतया भौतिकवादी व्यक्ति नाम, यश और कीर्ति के पीछे लगे रहते हैं।
So if someone takes to Krishna consciousness for these reasons, he will never be able to understand this philosophy.
अतः यदि कोई इन कारणों से कृष्ण भावना को स्वीकार करता है तो वह कभी इस दर्शन शास्त्र को नहीं समझ पाएगा।
Such persons take to religious principles as a social decoration.
ऐसे व्यक्ति धर्म को सामाजिक अलंकार के रूप में ग्रहण करते हैं।
They admit themselves into some cultural institution for the sake of name only.
वे किसी सांस्कृतिक संस्थान में सिर्फ नाम के लिए शामिल होते हैं।
Especially in this age.
विशेषतया इस युग में।
Such persons also cannot understand the philosophy of Krishna consciousness.
ऐसे व्यक्ति भी कृष्ण भावना के दर्शन को नहीं समझ सकते।
Even if one is not greedy for material possessions, but is too attached to family life, he also cannot understand Krishna consciousness.
अगर कोई व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के लिए लालची न भी हो, किंतु यदि वह गृहस्थ जीवन के प्रति बहुत आसक्त है, तो भी वह कृष्ण भावना को नहीं समझ सकता।
Superficially, such persons are not very greedy for material possessions.
अगर ऊपर से देखा जाए तो ये लोग भौतिक चीजों के लिए ज्यादा लोभी नहीं हैं।
But they are too attached to wife, children and family improvement.
लेकिन वो अपने पत्नी, बच्चे और परिवार के उन्नति के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं।
When a person is not contaminated by the above mentioned faults, yet at the ultimate issue is not interested in the service of the Supreme Personality of Godhead, or if he is a non-devotee, he also cannot understand the philosophy of Krishna consciousness.
यदि किसी व्यक्ति में ये सब दोष नहीं हो, फिर भी यदि वो भगवान की सेवा में रुचि नहीं रखता, या वो अभक्त है, तो वो भी कृष्ण भावना के दर्शन को नहीं समझ सकता।
ॐ अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
Lord Kapiladev is here and concluding his most auspicious instructions to his beloved mother and disciple Devahuti.
यहाँ पर भगवान कपिल देव अपनी माता और शिष्य देवहूति को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।
In the third canto of Srimad Bhagavatam, Srila Shukadev Goswami has described quite elaborately the teachings of Lord Kapiladev.
Srimad Bhagavat ke tritiya skand mein Shukadev Goswami ne bahut hi vivaran ke sath Kapiladev ki shiksha ka varnan kiya hai.
He has explained the system of Sankhya philosophy which deals with the very technical details of how the eternal pure soul is entangled within the network of material bondage.
उन्होंने बहुत ही विवरण के साथ समझाया है कि कैसे जीवात्मा जो है इस भौतिक संसार के बंधन में फंस जाता है।
Essentially, he describes to Devahuti, the living entity is bound by material illusion due to forgetfulness of one's constitutional position.
वस्तुतः उन्होंने समझाया है कि भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाने के कारण व्यक्ति इसमें बंध जाता है।
That forgetfulness is called ignorance.
ये भूल जाने को बोलते हैं अज्ञान।
In this forgetfulness, one enters into the deep, dense forest of material existence.
और इस भूल जाने के कारण व्यक्ति भौतिक अस्तित्व के जंगल में फंस जाता है।
If any of you have ever been lost deep into a forest, you understand it's practically impossible to find your way out.
अगर आप में से कोई व्यक्ति कभी किसी जंगल में गुम हो गया है, तो आप समझेंगे कि बाहर निकलना नामुमकिन है।
Because all the trees basically look the same.
क्योंकि सारे पेड़ एक जैसे नजर आते हैं।
You do not know which direction you're going.
आपको ये पता नहीं चलता कि आप किस दिशा में जा रहे हैं।
And for thousands of miles in all directions, all around are the same types of trees.
और हजारों मील में सब जगह पर एक ही प्रकार के वृक्ष नजर आते हैं।
You cannot get out of this forest without the help of someone who knows the way.
आप इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि उस व्यक्ति से मिलते हैं जिसको रास्ता पता है.
Lord Krishna knows the way.
श्री कृष्ण भगवान को यह रास्ता पता है.
He descends to this world to teach us how to get out of the forest of material existence.
और वो इस धरती पर अवतार लेते हैं हमें बताने के लिए कि कैसे इससे बाहर निकला जाए.
The scriptures are the map.
जो शास्त्र है वो नक्शा है.
And the spiritual master and the great Vaishnavas, Diksha gurus and Shiksha gurus, are those who have been trained by him.
और गुरु और वैष्णव जो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु वो हैं जिनको भगवान के द्वारा शिक्षा प्रदान की गई है.
Some who are most perfected in their consciousness, they have already come out of the forest and come back in to help you get out.
और कुछ हैं जो कि अपनी पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं, वो जंगल से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन फिर आए हैं आपको मदद करने के लिए.
Others may have never seen what's outside directly, but they know the way because they have heard carefully.
और दूसरे हैं जिनको रास्ता बाहर नहीं आए हों, लेकिन उनको पता है क्योंकि उन्होंने बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण किया.
So Lord Kapila Dev describes how we can become disentangled from the fruitive actions of material life.
भगवान कपिल देव सिखा रहे हैं कि कैसे हम इस भौतिक कार्यों के बंधन से बाहर निकल सकते हैं.
That is only possible through devotional service.
वो सिर्फ भक्ति के द्वारा ही संभव है.
Engaging the same mind and senses that are causing bondage in the loving service of the Lord under the direction of the Lord's pure devotees.
और वही इंद्रिय और मन जो कि बंधन का कारण बन रहे हैं उनको भगवान की सेवा में लगाना गुरु और भक्तों के निर्देश में.
The same attachments that we have now, if they are simply redirected toward Krishna and his devotees, we become free from all the illusions of material life.
वही आसक्ति जो अभी हमें भौतिक चीज़ों के प्रति है वही अगर हम कृष्ण और भक्तों की तरफ लगाते हैं तो हम पूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं.
And anyone, everyone, even the lowest person from the family of dog eaters can achieve the perfection of life simply by becoming a sincere devotee and chanting the holy names of the Lord.
और कोई भी व्यक्ति हो चाहे वह शोपच परिवार से भी क्यों ना हो वो भी पूर्णता प्राप्त कर सकता है भगवान के पवित्र नामों को गाकर.
This in essence is what Kapila Dev has taught.
ये कपिल देव की शिक्षा का सार है.
But he goes into such incredibly authoritative depth.
और वो बहुत ज्यादा गहराई में समझाते हैं.
Into the nature of the soul.
आत्मा के स्वभाव के बारे में.
The nature of material existence.
ये भौतिक अस्तित्व के स्वभाव के बारे में.
And the path of bhakti.
और भक्ति के मार्ग के विषय में.
He is just concluding his wonderful teachings.
और उनकी सुंदर शिक्षाओं का ये अंतिम भाग है.
And describing in these two verses we are reading today a very important factor for everyone who wants to realize this message.
और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य इन दो श्लोकों में बता रहे हैं जो व्यक्ति साक्षात करना चाहते हैं उनके लिए.
That the science of devotional service can be heard by anyone.
जो भक्ति का विज्ञान है वो किसी के साथ किसी के द्वारा सुना जा सकता है.
But it can only be understood by those who have these qualifications.
लेकिन सिर्फ उसी के द्वारा समझा जा सकता है जिसके अंदर ये गुण है.
Krishna explains to Arjuna that you Bhakto Sime Shakashiti Rahasyam Yetadutamam. You can understand these teachings because you are my friend and my devotee.
Bhagavan Krishna Arjun ko batate hain Gita mein, aap is shiksha ko samajh sakte hain kyunki aap mere bhakt aur mitra hain.
You are not envious.
Aap irshalu nahi hain.
Srila Prabhupada's books have been distributed to millions of people throughout the world.
और श्रीला प्रभुपाद जी की शिक्षाएं जो है पुस्तक जो है लाखों लोगों को बांटे गए हैं.
But yet certain people even after reading these books cannot understand.
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पाते.
What to speak of all the hundreds of editions of Bhagavad Gita that were translated and commented by
previous scholars, they never could even describe the proper message of Gita.
और दूसरा उसका तो कहना है कि कई विद्वानों ने जो भगवत गीता पर अनुवाद भगवत गीता का अनुवाद किया है वो गीता के सही संदेश का वर्णन ही नहीं कर पाए.
This is a mystery.
यह एक रहस्य है.
But Lord Kapila Dev is explaining exactly why.
और यहाँ पर भगवान कपिल देव बता रहे हैं कि ऐसा क्यों है.
Because this message is none different than the Lord Himself.
क्योंकि यह संदेश भगवान से अभिन्न है.
And He reciprocates within our heart as we are hearing. By revealing these truths according to our approach.
और हम जिस भावना से उसके सामने प्रकट होते हैं उसके अनुसार भगवान इसको दर्शाते हैं.
Srila Prabhupada is explaining in this wonderful purport so many of the factors which disqualify a person from perfecting their life even after coming to the Krishna consciousness movement.
और इस तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि कई अनेक कारण हैं जिसके कारण कृष्ण भावना में आने के बाद भी व्यक्ति पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाता.
I will give an example.
मैं एक उदाहरण दूंगा.
There was an initiation ceremony.
एक दीक्षा समारोह था.
And Srila Prabhupada would accept whoever the temple presidents would recommend for initiation.
और मंदिर के अध्यक्ष जिसका भी नाम आगे बताते श्री प्रभुपाद जी को उनको प्रभुपाद जी दीक्षा प्रदान करते.
Because he wanted to put a sense of responsibility in his leaders.
क्योंकि वो अपने नेताओं के मन में जिम्मेदारी की भावना डालना चाहते थे.
One temple president, he recommended a particular person for initiation who others in the temple were thinking, why him?
और मंदिर के अध्यक्ष ने एक व्यक्ति का नाम दिया दीक्षा के लिए और बाकी मंदिर के लोग सोच रहे थे इसका नाम क्यों दिया.
He appears that he has ulterior motives.
ऐसा पता चलता है कि उसके मन में दूसरे इरादे.
So the initiation ceremony took place.
दीक्षा समारोह पूर्ण हुआ.
This person who was living in the temple for several months.
ये व्यक्ति जो कई महीनों से मंदिर में रह रहा था.
He was initiated.
उसको दीक्षा प्रदान की गई.
The next day after initiation he left.
और अगले दिन ही वो दीक्षा के बाद छोड़कर चला गया.
He got what he wanted.
उसको जो उसे चाहिए था मिल गया.
They reported to Srila Prabhupada, not only did he leave, but he's not even following the principles the next day.
उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को बताया कि न केवल वो छोड़कर गया बल्कि वो सिद्धांतों का पालन भी नहीं कर रहा.
Srila Prabhupada said, I never initiated him.
श्रील प्रभुपाद ने कहा मैंने उसे कभी दीक्षा नहीं दी.
That was not initiation.
वो दीक्षा नहीं थी.
Because he didn't accept me in a submissive state of mind as his spiritual master.
क्योंकि उसने नम्र भावना से मुझे गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया.
And therefore, how could I accept him as a bona fide disciple?
तो मैं उसे सच्चे शिष्य के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता
हूँ? So initiation is not the ceremony.
तो दीक्षा जो है वो सिर्फ समारोह नहीं है.
Initiation is the act of surrender.
दीक्षा का मतलब है समर्पण का कार्य.
When a disciple is sincerely dedicated and willing to surrender his or her life. And the spiritual master reciprocates by giving instruction and giving his mercy to the connect them to the disciplic succession. That is initiation.
जब जो है शिष्य के अंदर भावना होती है तब गुरु उसको जब कृपा दिखाते हैं तब वो वास्तव में जो है दीक्षा कहा जाता है.
Just taking a name and taking beads and speaking your vow and sitting at the fire yagya is not at all initiation.
सिर्फ जो है नाम स्वीकार करना और माला लेना और समारोह में बैठना यही सिर्फ दीक्षा नहीं है.
This person threw all his seeds in the fire, but Prabhupada said he was never initiated.
उन्होंने अपने सारे बीज अग्नि में डाले लेकिन प्रभुपाद जी ने बताया कि वो कभी उनकी दीक्षा नहीं.
Because he had ulterior motives.
क्योंकि उसके दूसरे इरादे थे.
You cannot cheat Krishna.
आप कृष्ण को धोखा नहीं दे सकते.
You can try.
आप प्रयास कर सकते हैं.
But ultimately, you will be cheated.
लेकिन अंततः आप स्वयं धोखा खाएंगे.
Because Krishna is within the heart.
क्योंकि कृष्ण आपके हृदय में.
He knows your motives.
वो आपके इरादों को जानते हैं.
He knows who you are and what you want.
और वो जानते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं.
And he's the one that's connecting you to Guru.
और वही हैं जो कि आपको गुरु से संबंध जोड़ रहे हैं.
And if he sees your motives are not proper.
और अगर वो देखते हैं आपके इरादे ठीक नहीं हैं.
There's no connection.
तो वो संबंध नहीं हो पाता.
It is just a mundane ritual.
वो सिर्फ एक भौतिक रीति रिवाज हो जाता है.
And it can be nothing more.
और से ज्यादा हो ही नहीं सकता.
Srila Prabhupada explains here very strongly that
We have experienced that some students come to join us, but because of being biased by a particular type of faith, of another religious idea, they go away.
श्री प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे पास आते हैं लेकिन उनका विचार किसी दूसरे धार्मिक श्रद्धा के ऊपर होता है इसलिए चले जाते हैं।
That means they haven't really accepted the message.
इसका मतलब यह है कि उन्होंने वास्तविक रूप से संदेश को स्वीकार नहीं किया है।
Sometimes people come to Krishna consciousness and they have their own preconceived ideas of what the truth is and what is religion.
कई बार लोग कृष्ण भावना में आते हैं और उनके पहले के विचार होते हैं कि सत्य क्या है धर्म क्या है
एंड सच पर्संस बिकॉज दे डू नॉट अप्रोच इन द स्पिरिट ऑफ अर्जुना दैट आई नो नथिंग एंड ट्रूली एक्सेप्ट व्हाट द स्पिरिचुअल मास्टर टीचेस द रियल कनेक्शन टू कृष्ण इज नॉट मेड
क्योंकि वो सच्ची नम्रता की भावना जैसे अर्जुन ने बताया था कि मुझे कुछ नहीं पता है वो उस भावना से नहीं आते इसलिए उन्हें सत्य नहीं प्राप्त होता
तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेनस्तत्वदर्शनम् How to approach guru is explained by Krishna. You must approach submissively in a humble state of mind.
गुरु के पास किस भावना से जाना चाहिए ये कृष्ण भगवान बताते हैं कि नम्रता की भावना से हमें उनके सामने प्रकट होना चाहिए
Submissive means you know better than me.
और नम्रता का अर्थ है कि आपको मेरे से ज्यादा पता है
Submissive doesn't mean I will accept whatever parts you teach me that I agree with.
नम्रता का अर्थ ये नहीं है कि मैं उस भाग को स्वीकार करूंगा जो मुझे जिससे मैं एग्री मानता हूँ
But if due to my higher understanding of the science of religion I do not agree with any part then I cannot accept
lekin mere uch gyan ke karan agar main koi baat ko nahi swikar karta to main usko tiraskar kar dunga
such a person may superficially accept a guru but he really doesn't accept him at all
aur aisa vyakti chahe upari roop se pata lagega ki wo guru swikar kiya hai lekin vastav mein usne guru nahi swikar kiya
thus in due course of time that person will drift away from Krishna consciousness unless one reforms one's consciousness
aur kuch samay baad wo Krishna bhavan se alag ho jayega yadi wo apne aap ko badalta nahi hai to
Prabhupada explains there are so called disciples he doesn't call them disciples there are so called disciples who become submissive to the spiritual master most artificially with ulterior motive
shri prabhupada samjhate hain aise kuch tatha kathit shishya hain unko wo shishya nahi kehte balki tatha kathit shishya hain jo ki guru ko samarpan dikhate hain upar se
there is a saying in the english language
angrezi bhasha mein kahavat hai
too much devotion is the sign of a thief
se bataya gaya ki ati bhakti jo hai wo chor ki lakshan hai
If someone wants to steal something from you they will appear to be very nice
agar koi vyakti aapse kuch churana chahta hai to aapse bahut acha vyavhar karenge
just like vyomasura
jaise ki vyomasura
vyomasura was a terrible demon
vyomasura jo bahut bhayankar rakshas tha
in fact he was the son of maya the great demon
wo may danav ka putra tha
and he decided that he wanted to destroy krishna and the inhabitants of vrindavan
wo krishna aur sare brijavasiyon ka nash karna chahta tha
so he was a great magician
wo bahut bada jadugar tha
he could perform wonderful tricks being the son of the demon maya
aur maidanam ka putra hone ke nate wo bahut tarkeebe janta tha
he changed his huge rakshasa form into that of a beautiful little cowherd boy
usne apne vishal rakshasi roop ko parivartit kar diya ek sundar gwale ke roop mein
and not only that but he had all the characteristics of a very loving devotee of krishna
aur yahi nahi unke andar sab krishna ke premi bhakt ke lakshan the
one day the gopis were playing a very fun game
ek bar gop gwal jo hai ek bahut hi mazedar खेल खेल रहे थे
They divided into three groups.
उन्होंने तीन ग्रुप्स बनाए
One group was playing the role of sheep.
एक ग्रुप जो है भेड़ियों का रोल खेल रहा था.
The other group were shepherds or those who take care of sheep.
और दूसरा जो ग्रुप है वो भेड़ियों के रखवाला था.
And the third group took the role of thieves or those who like to steal sheep.
और तीसरा ग्रुप जो चोरों का था जो भेड़ियों को चोरी करना चाहते हैं.
So this beautiful little cowherd boy took the side of the thieves.
और ये सुंदर ग्वाले ने जो है चोरों का साइड लिया.
And the idea is the thieves would try to catch the sheep and the shepherds would try to catch the thieves.
और ऐसा गेम था कि जो चोर हैं वो भेड़ियों को लेने का प्रयास करते और जो भेड़ियों के रखवाले हैं वो चोरों को पकड़ने का प्रयास करते.
It was a very enjoyable game.
वो बहुत आनंददायक एक खेल था.
They were playing it on the slopes of a beautiful mountain in Brajbhumi.
वो ब्रजभूमि में एक सुंदर पर्वत के पास खेल रहे थे.
But this Vyomasura, even though he appeared just like a devoted little cowherd boy, he was actually stealing the children who were in the role of sheep.
और ये व्योमासुर जो है हालांकि वो एक ग्वाला लग रहा था वो वास्तव में चोरी कर रहा था ग्वाल बालों को.
He was not playing game.
वो खेल नहीं रहा था.
He was taking these boys one by one and putting them in a deep dark mountain cave.
वो एक एक करके ग्वालों को लेकर एक पर्वत की गुफाओं में डाल रहा था.
With a big massive rock blocking the cave so no one can get out.
और एक बहुत बड़ी विशाल उसने चट्टान रखी थी जिससे कि कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकल सके.
Vyomasura stole one gopa after another after another after another.
व्योमासुर ने एक एक करके अनेक गोप ग्वालों को चोरी किया.
Krishna Balaram, while they were playing, they saw practically all their friends were gone.
और कृष्ण भगवान खेल रहे थे देखा कि धीरे धीरे करके सब ग्वाल बाल अदृश्य हो गए.
There were only a few left.
और कुछ ही बचे थे.
Krishna knows everything.
कृष्ण सब जानते हैं.
He knew who this cowherd boy was.
वो जानते थे ये ग्वाला कौन है.
What was his motivation?
उसका इरादा क्या है.
Too much devotion is the sign of a thief.
अति भक्ति जो है चोर का लक्षण है.
So as Vyomasura was taking another boy away,
जैसे कि व्योमासुर दूसरे ग्वाल को ले जा रहे थे,
Krishna decided it is time to catch the thief.
कृष्ण ने निश्चय किया कि अभी चोर को पकड़ने का समय आ गया है.
He grabbed with his arms Vyomasura.
उन्होंने अपनी भुजाओं से व्योमासुर को पकड़ लिया.
Vyomasura understood that he was in the hands of death.
व्योमासुर समझ गया कि वह मृत्यु के पंजे में है.
He struggled to get away.
उसने भागने का निकलने का प्रयास किया.
But Krishna held him very tightly with his arms.
लेकिन कृष्ण ने अपने भुजाओं से बड़े जबरदस्ती से पकड़ लिया.
व्योमासुरा revealed his original form, which was as big as a terrible mountain.
और व्योमासुर ने अपना असली रूप प्रकट किया जो कि एक विशाल भयंकर पर्वत के समान था.
With all his mountainous rakshasa strength, he was trying to get out of this little cowherd boy Krishna's arms.
और अपने पूरे राक्षसी शक्ति से वो कृष्ण के भुजाओं से निकलने का प्रयास कर रहा था.
But Krishna squeezed him so hard that he strangled him.
लेकिन कृष्ण के भुजाओं इतने कठोर थे कि उसका गला रुंध गया.
Then he threw him down.
और उसको नीचे फेंक दिया.
हरे कृष्ण. Vyomasura was dead.
व्योमासुर का वध हो गया.
The cowherd boys were dancing very happily.
और ग्वाल बाल बड़े आनंद से नाचने लगे.
And the demigods were showering flowers and singing music.
और देवता जब फूलों की वर्षा कर रहे थे और वाद्य बजा रहे थे.
Then Krishna went to that cave.
कृष्ण उस गुफा के पास गए.
And with his unlimited strength, he broke to pieces that rock covering the opening of the cave.
और अपने असीमित शक्ति से उन्होंने चट्टान के टुकड़े-टुकड़े कर दिए.
Then he released all the gopas.
और सारे गोपों को मुक्त कर दिया.
So this beautiful story illustrates how we have all been captured by the agents of Maya.
इस सुंदर कथा से हमें पता चलता है कि हम सब माया के द्वारा बांधे गए हैं.
We are all imprisoned within this dark cave of ignorance.
हम अज्ञान की गुफा में जो है कैद हो गए हैं.
And there's no way to escape.
और निकलने का कोई चारा नहीं है.
unless Krishna saves us.
जब तक कि कृष्ण नहीं बचाते.
He is the only person who has the power to remove that rock, which is like the false ego, which keeps us within this cave of material existence.
और वही एक व्यक्ति है जो हमें उस चट्टान से निकाल सकते हैं जो कि हमारा मिथ्या अहंकार है जो हमें इसमें बनाए रख रहा है.
He is the only one who can destroy these vyomasura demons within our heart who keep us within these caves.
और वही है जो कि हमारे हृदय में जो असुर है जो विमसुर के समान उसको मार सकते हैं.
That same cave is still there in Kamvan, in Brajdham.
और ये गुफा आज भी काम्यवन ब्रजधाम में है.
Have any of you been to this cave?
आप में से कोई गया उस गुफा को देखने?
So sometimes Srila Prabhupada is explaining, a person approaches Krishna or the spiritual master in the guise of being very, very submissive.
Srila Prabhupada samjhate hain ki kabhi kabhi koi shishya guru ke paas aate hain bahut bahut namra bhavna se.
But it is a show.
Lekin wo dikhawa hai.
Because in their submissiveness, they do not actually want to follow.
Lekin apni namrata se vastav mein aagya palan nahi karna chahte.
Rather than wanting to actually serve, their service is oriented toward their own individual egoistic purposes.
वास्तव में सेवा करने के बजाय वह स्वयं के मिथ्या अहंकार की भावना से कर रहे हैं.
This is a very dangerous quality that we have to very carefully check within our own hearts.
ये बहुत एक खतरनाक दुर्गुण है जो कि हमें अपने हृदय में देखना चाहिए.
Otherwise, it will be impossible to understand what is Krishna consciousness.
नहीं तो कृष्ण भावना को समझना नामुमकिन हो जाए.
Sometimes a person is very, very submissive because they feel once I get the ceremony of initiation and I get my name, then I will be considered a senior Vaishnav and people will respect me as an initiated devotee.
कभी कभी लोग बहुत नम्र होते हैं ये सोच के कि एक बार मेरी दीक्षा हो जाए मुझे नाम दिया जाएगा तो मुझे एक वरिष्ठ वैष्णव माना जाएगा और लोग मुझे आदर देंगे.
Such a person cannot understand Krishna consciousness.
ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावना को नहीं समझ सकता.
Others feel that once I get this initiation, I'll be so submissive and humble until I get initiation, because when I do, then I'll be liberated. I'll get the pious activities. Then I can go out and do what I like.
और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार मुझे जब दीक्षा हो जाएगी तो मैं मुक्त हो जाऊंगा और फिर मैं जो चाहे कर सकता हूं.
Such a person has not even been initiated.
ऐसे व्यक्ति की दीक्षा ही नहीं हुई है.
You think you're cheating Krishna, but Krishna cheats you.
आपको ऐसा लगता है कि आप कृष्ण को धोखा दे रहे हैं परंतु वास्तव में कृष्ण आपको धोखा दे.
You're thinking I'm making a show to be connected to disciplic succession and you think you're connected, but you're not.
आपको ऐसा लग रहा है कि आप परंपरा से जुड़े गए हैं लेकिन वास्तव में आप नहीं जुड़े.
You cannot cheat the greatest cheater.
सबसे बड़े धोखेबाज को आप धोखा नहीं दे सकते.
That is Krishna.
वो कृष्णा.
Others, they come and they're very, very submissive because they want some material benefits.
और कुछ लोग जो बहुत नम्र होते हैं क्योंकि वो भौतिक लाभ चाहते हैं.
I'll get nice prasad.
मेरे को अच्छा प्रसाद मिले.
Of course, in some temples it's very simple, but other temples are quite opulent.
कुछ मंदिरों में बहुत बहुत सादा प्रसाद होता है लेकिन कई जगह पर
I'll get to live in this beautiful building.
और मुझे इस सुंदर बिल्डिंग में रहने का अवसर मिलेगा.
And wherever I go, people will bow down to me because I am in saffron cloth.
जहाँ भी जाऊँगा लोग मुझे आदर करेंगे कि मैंने भगवे कपड़े पहने.
And soon I'll get a higher position.
और मुझे एक ऊंचा पद मिलेगा.
I'll become the temple commander.
फिर मैं टेंपल कमांडर बन जाऊं.
I may become a department head.
या मैं डिपार्टमेंट का.
And then people will be under me.
और लोग मेरे अधीन होंगे.
And I will not only be respected by them.
न केवल लोग मेरा आदर करेंगे.
But I will lord it over them to my heart's content.
और अपने हृदय से मैं उन पर दादागिरी करूं.
So this movement is very nice.
और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है.
Oh Guru Maharaj, I will do anything for you.
वे गुरु महाराज मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा.
I am your servant and the servant of your servants.
मैं आपके दासों के दासों का दास.
Please give me your blessings.
कृपया मेरे को आशीर्वाद दीजिए.
Such a person may become temple commander.
ऐसा व्यक्ति जो है टेंपल कमांडर बन सकता.
May become temple president.
वो व्यक्ति मंदिर का अध्यक्ष भी बन सकता.
May become GBC.
वो व्यक्ति GBC भी बन सकता.
but he cannot understand what is Krishna consciousness.
वो कृष्ण भावना क्या है नहीं समझ सकते.
Because of this ulterior motive.
क्योंकि उसके दूसरे इरादे हैं.
A common story of Srila Prabhupada is people coming for blessings.
एक बहुत ही चीज जो प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं कि लोग आशीर्वाद मांगने आते हैं.
One time, a materialistic person, he was so submissive in his appearance.
एक भौतिक व्यक्ति जो कि दिखावे में बहुत ज्यादा नम्र था.
He had folded palms.
अपने हाथ जोड़ के
tears in eyes,
आँखों में आंसू,
and bowing down again and again and again and again,
बार बार प्रणाम कर रहा था,
and touching his heart,
और अपने हृदय को स्पर्श कर,
and saying, Swami ji, I am your servant, I am surrendered to you.
और वो कह रहा था, Swami ji, मैं आपका सेवक हूँ, आपके प्रति समर्पित हूँ.
Please give me your blessings.
कृपया मेरे को आशीर्वाद प्रदान करिए.
Srila Prabhupada. This was actually in a train. This person kept coming in. Please give me your blessing, Swamiji.
ये एक ट्रेन में था. वो बार-बार स्वामीजी से, प्रभुपाजी से आशीर्वाद मांग रहा.
Prabhupada understood that this person had ulterior motives.
श्रील प्रभुपाजी समझ गए कि इसके दूसरे इरादे हैं.
He said, "I give you the blessing that you lose everything and your whole family falls to pieces."
श्रील प्रभुपाजी ने कहा कि मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप सब कुछ खो देंगे और आपका परिवार नष्ट हो जाएगा.
So the person was weeping and crying, saying, "No, Swamiji, not like that. That's not the blessing I came for."
और रोने लगा, कहने लगा, स्वामी जी ये नहीं, मैं इस आशीर्वाद के लिए नहीं आया था.
Prabhupada said, "I already gave you the blessing."
श्रीला प्रभुपाद जी बोले, मैंने आशीर्वाद दे ही दिया already.
He said, "No, Swamiji, you do not understand."
उसने कहा, स्वामी जी आप समझ नहीं रहे.
He was falling at Prabhupada's feet and offering repeated dandavats.
और बार-बार उनको दंडवत करने लगा.
स्वामी जी give me a different blessing.
स्वामी जी मुझे दूसरा आशीर्वाद दो.
But Prabhupada just told him, "You chant Hare Krishna."
श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि आप हरे कृष्णा गाइए.
So he was approaching Guru, but he was not approaching in a way to receive what Guru gives.
वो गुरु के पास आ रहे थे लेकिन उस भावना से नहीं कि इससे से कुछ मिल सके.
Should not approach the spiritual master to improve our material life.
हमें अपने भौतिक जीवन के सुधार के लिए गुरु के पास नहीं जाना चाहिए.
We should approach the spiritual master to transcend material life.
हमें गुरु के पास इस भावना से जाना चाहिए कि भौतिक जीवन से ऊपर उठ सके.
We should not approach the spiritual master with the desire to be recognized or to gain some position.
हमें गुरु के पास इस भावना से भी नहीं जाना चाहिए कि हमें कुछ पदवी प्राप्त हो.
We should approach the spiritual master in a spirit of humility and a desire to actually serve.
हमें नम्रता और सेवा भावना की इच्छा से इनके साथ जाना चाहिए.
Otherwise, you can go through all the forms of being a disciple, but not understand Krishna.
नहीं तो आप सब क्रियाएं कर सकते हैं शिष्य के, लेकिन आप कृष्ण को नहीं समझते.
In fact, you can go through your whole life.
आप जो है अपने पूरे जीवन में जा सकते हैं
superficially practicing Krishna consciousness,
दिखावे के रूप में कृष्ण भावना का अभ्यास करते हैं,
and not understand what is bhakti.
और ये नहीं समझ पाएंगे कि भक्ति क्या है.
Srila Prabhupada is describing also how persons who are too much attached to family life for the purpose of sense gratification.
श्री प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो कि परिवार जीवन के प्रति इंद्र तृप्ति के लिए आसक्त हैं बहुत ज्यादा.
Who are proud of their material possessions.
जो अपने भौतिक चीजों के प्रति गर्वशाली हैं.
Material possessions means wealth.
भौतिक चीजों का मतलब है संपत्ति.
Knowledge.
ज्ञान.
Beauty.
सुंदरता.
Strength.
बल.
Fame.
यश.
Renunciation.
वैराग्य.
These are all types of material possessions. If you are proud of these things, or even proud of the family that you have taken birth in, you cannot understand Krishna.
अगर आपको इनमें से किसी चीज़ से गर्व होता है, तो आप कृष्ण को नहीं समझ सकते.
Pride is so dangerous.
अभिमान बहुत खतरनाक है.
Just recently, I was studying the story of Nalakuvera and Manigriva.
Abhi kuch hi samay pehle main Nalakuvera aur Manigriva ki katha pad raha tha.
How they were cursed by Narada Muni to become trees.
Kaise Narad Muni ne unko shaap diya tha ped banne ke liye.
They stood as trees for many, many long celestial years.
कई हजारों देवताओं के वर्ष तक वो वृक्ष बने रहे.
And at the very end of this curse, Krishna happened to live right where those trees
और
to watch his transcendental pastime.
और अंत में जो है वो वहाँ पर थे जहाँ पर कृष्ण भगवान निवास कर रहे थे.
Shukadev Goswami explains how this Manigriva and Nalakuvera were very intimate, confidential, personal associates of Lord Shiva.
Shukadev Maharaj बताते हैं कि वो शिवजी के बहुत ही घनिष्ठ संबंधी थे.
How many people have that position?
कितने लोगों के पास ऐसी स्थिति होती है?
They were the sons of Kuvera. They were demigods. That's something to be proud of.
वे देवता थे, कुबेर के पुत्र थे. ये तो गर्व की चीज है.
Lord Shiva is Param Vaishnav.
और शिवजी जो हैं, वो परम वैष्णव हैं.
Vaishnavanam yathashambhu. He's the greatest Vaishnav.
वो सबसे बड़े वैष्णव हैं.
He's the founder acharya of the Rudra Sampradaya.
वो रुद्र संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं.
He is a great spiritual master of Vaishnavism.
वो वैष्णविज्म के बहुत बड़े आचार्य हैं.
So they were actually personal associates of Lord Shiva, the great guru.
वो शिवजी के जो है परम सहचर थे. देखिए,
they were proud of that.
उनको इस बात का गर्व हो गया था.
Therefore, because of that pride, they fell down from their position.
और इस अभिमान के कारण वो अपनी स्थिति से गिर पड़े.
Along with other types of pride and attachment.
और के साथ साथ दूसरे भी अभिमान और आसक्ति थे.
So just see how subtle Maya can work.
जरा देखिए कैसे सूक्ष्म माया कार्य करती है.
We have actually seen.
हमने वास्तव में देखा है.
Within the Hare Krishna movement, actually, only a handful of people actually had close personal association with Srila Prabhupada.
ये हरे कृष्ण आंदोलन में कुछ गिने चुने लोगों को ही श्रीला प्रभुपाद से व्यक्तिगत संग लाभ हुआ था.
Others would hear his lectures and see him and offer him guru puja and sometimes get an instruction from him personally, but most devotees were just the servant of the servant of his servants.
कुछ थे अधिकतर लोग तो उनका प्रवचन को सुनते और कभी कभी उनका दर्शन कर पाते, लेकिन व्यक्तिगत या दासों के दास थे उनके.
Comparatively, there were quite few who actually were in the inner circle where they can personally associate with Srila Prabhupada.
और कुछ ही थे जो कि अंतरंग समूह में थे जो प्रभुपाद जी का संग कर पा रहे थे.
However, there's a danger.
लेकिन ये खतरा है.
It sometimes safer not to be in that situation.
कभी कभी ज्यादा सुरक्षित है कि हम उस स्थिति में नहीं रहें.
Because you become proud.
क्योंकि आपका अभिमान हो जाता है.
You start thinking, I am better than those people who didn't have such association with Srila Prabhupada.
हम ऐसा सोच सकते हैं कि मैं उन लोगों से ज्यादा अच्छा हूँ जिनको श्रील प्रभुपाद जी का ऐसा संग नहीं मिला.
Because of my personal proximity with His divine grace, I know better who is Srila Prabhupada than the people studying His books and surrendering their lives to serving Him.
क्योंकि मैं उनका व्यक्तिगत संग कर रहा हूँ, तो मैं उनसे ज्यादा अच्छा हूँ जो कि उनकी पुस्तक पढ़ रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं.
And we become proud that I am closer to Prabhupada than others.
हमको अभिमान हो जाता है कि मैं श्रील प्रभुपाद से ज्यादा घनिष्ठ हूँ दूसरों के.
And that pride, you make apradhs.
और उस अभिमान के कारण हम अपराध कर बैठते
हैं. When you're proud, you have to make apradhs. It's natural.
जब आप अभिमानी होते हैं तो स्वाभाविक आप अपराध कर बैठते हैं.
And then you have to suffer the reaction to the apradhs.
और फिर उसका फल आपको भुगतना पड़ता है.
Prabhupada and Krishna withdraw their mercy and then bloop, you just fall into the Maya's pit.
प्रभुपाद और कृष्ण अपनी कृपा को निकाल लेते हैं और फिर आप माया के गड्ढे में गिर पड़ते हैं.
So we cannot be proud of anything.
हमें किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए.
In such a way that we think we're better than someone.
जिससे कि हम अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ माने.
If we're proud of Prabhupada's mercy, then that makes us feel small. It doesn't make us feel better than another.
जब अगर हम प्रभुपाद जी की कृपा के गौरवशाली हैं, तो उससे हम अपने आप को तुच्छ मानेंगे, दूसरे से श्रेष्ठ नहीं मानेंगे.
So we should not be proud of any of our possessions, it is explained here. Otherwise, we cannot understand the essence of what is bhakti.
हमें किसी भी चीज़ का गर्व नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे इस तत्व को.
We have to be honest.
हमें ईमानदार रहना चाहिए.
We have to be genuinely sincere.
हमें सच्चे दिल से प्रयास करना चाहिए.
That I want to serve.
मैं सेवा करना चाहता हूँ.
I'm a useless soul.
मैं एक बेकार आत्मा हूँ.
I need desperately the mercy of Guru and Gauranga.
मुझे गुरु और गौरांग की कृपा बहुत जरूरत है.
In Mumbai, few days ago, the Brahmacharis of Shri Shri Radha Gopinath Mandir performed the drama of the meeting of Sri Rupa Goswami and Srila Sanatan Goswami with Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu.
मुंबई में जो है राधा गोपीनाथ मंदिर के ब्रह्मचारियों ने एक ड्रामा नाटक किया जिसमें चैतन्य महाप्रभु से रूप और सनातन भेंट करते हैं.
It was produced and directed by Govinda Prabhu.
इसके निर्देशक जो है और निर्माता जो है वो गोविंद प्रभु हैं.
Who is the pride of Belgaum?
जबकि बेलगाम के गर्व हैं.
He was born and raised on the soils of this holy place.
इस पवित्र स्थान के मिट्टी में जो है वो उनका जन्म हुआ और वो यहाँ पर बड़े हुए.
And Chaitanya Mahaprabhu was played by Shikshastakam Prabhu.
चैतन्य महाप्रभु का रोल शिक्षास्तकम प्रभु ने अदा किया था.
Rupa Goswami was played by Gaur Gopal Prabhu. Sanatan Goswami was played by our Madhvacharya Prabhu.
Sanatan Goswami ka role Madhvacharya Prabhu ne.
It was beautifully enacted.
Bahut sundar dhang se wo kiya gaya.
Anyone who submissively witnessed this drama will never take birth in this material world again.
Jo bhi koi namrata purvak is drama ko jisne dekha wo fir bhautik jagat mein janam nahi lega.
And Sri Chaitanya Prabhu, he played the Nawab Hussain Shah.
और श्री चैतन्य प्रभु ने नवाब हुसैन शाह का रोल खेला.
वेरी नाइस.
बहुत सुंदर.
श्रीनाथ जी प्रभु इज अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन.
और श्रीनाथ जी प्रभु बहुत ही एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं.
आफ्टर द ड्रामा ही सेड दिस पर्सन प्लेइंग नवाब हुसैन शाह इज एक्सपर्ट एक्टर.
उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति नवाब हुसैन शाह बना वो एक्सपर्ट है ड्रामा.
I said he was just dovetailing his propensities.
और मैंने कहा कि वो अपनी प्रवृत्ति को कृष्ण की सेवा में लगा रहे थे.
Anyways, in this drama we saw this is how a person should approach guru, approach Krishna.
हमने देखा कि इस भावना से व्यक्ति को गुरु और कृष्ण के पास आना चाहिए.
रूप और सनातन had so much opulence.
रूप और सनातन के पास इतना ज्यादा ऐश्वर्य था.
But they were not attached or proud to any of it.
लेकिन वो किसी के बारे में भी उनको अभिमान नहीं था.
They were scholars.
वे विद्वान थे.
Very wealthy.
बहुत धनशाली.
High position.
उनकी ऊंची पदवी थी.
Had control over so many people's lives.
और कई लोगों के ऊपर उनका वश था.
They took birth in Brahmin Saraswat family.
उनका ब्राह्मण सरस्वत परिवार में जन्म हुआ था.
But they were not proud of any of it.
लेकिन उनको उनमें से किसी भी चीज का गर्व नहीं था.
Even though they were high class Brahmin birth, great scholars, they were prime ministers and home ministers of the whole kingdom, they considered themselves more degraded than Jagai and Madhai.
हालांकि वो इतने ऊंचे पद से थे, ऊंचे परिवार से थे, लेकिन वो अपने आप को जगाई और मधाई से भी ज्यादा पतित मान रहे थे.
They considered that there is no one more fallen than us.
वो सोच रहे थे कि हमारे से बढ़कर पतित कोई नहीं है.
No pride or attachment.
कोई अभिमान या आसक्ति नहीं.
They approached Lord Chaitanya with a genuine desire to understand what is the goal of life.
वो इस भावना से चैतन्य महाप्रभु के सामने आए कि जीवन का लक्ष्य क्या है.
And a honest willingness to follow.
और सच्ची इच्छा उसके आज्ञा पालन करने के लिए.
We must follow in the footsteps of Rupa and Sanatan if we want to understand what is bhakti.
अगर हम भक्ति समझना चाहते हैं तो रूप और सनातन के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए.
Srila Prabhupada's asking us to have wonderful programs to give everyone the chance.
Srila Prabhupada चाहते हैं कि हम बहुत सुंदर कार्यक्रम करें सबको अवसर मिल सके.
Yesterday here in Belgaum there was the beautiful offering of the devotees through Rath Yatra performance.
कल के कार्यक्रम में बहुत सुंदर एक अर्पण था भक्तों का रथ यात्रा कार्यक्रम के द्वारा.
Tens and thousands of people participated in one form or another in this wonderful procession.
दस हजारों से भी ज्यादा लोग ने इस कार्यक्रम में भाग लिया.
Many thousands of people came to the Pandal program yesterday evening.
और कल शाम को हजारों की संख्या में लोग पंडाल प्रोग्राम में आए.
and everyone had the chance to see Jagannath, to chant the holy names, and to hear the message.
और सब लोगों को जगन्नाथ का दर्शन हुआ और भगवान का नाम कीर्तन सुनने को मिला.
But we should know that only those who come to the standard of approaching in the proper state of mind can understand.
लेकिन सिर्फ वही व्यक्ति जो सच्ची भावना से आते हैं उसी वही व्यक्ति संदेश को समझ सकते हैं.
It is not that initially when a person first comes to Krishna consciousness they're in this state of mind.
ये जरूरी नहीं है कि जब पहली बार कोई व्यक्ति आता है तो वो इस मनोभावना में रहेगा.
But after reading the books and associating with devotees for some time, we have to come to the understanding of how we should approach Krishna and Guru without superficiality, artificiality or ulterior motives.
लेकिन इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद हमें समझना चाहिए कि कैसे हम गुरु और कृष्ण के सामने आए बिना किसी दूसरे इरादे के और बिना किसी ऊपरी दिखावे के.
We come to Krishna consciousness not to improve the standard of our material enjoyment.
हम अपने भौतिक इंद्र तृप्ति को बढ़ाने के लिए नहीं आना चाहिए.
We must come to Krishna consciousness with the burning desire to give up the desire for material enjoyment.
हमारे ऊपर एक हमारे हृदय में एक जलती इच्छा होनी चाहिए कि भौतिक इच्छाओं का हम त्याग करना चाहें.
And to surrender to Krishna.
कृष्ण को समर्पण करने के लिए.
According to Varnashram system, we may not be able to do it now, but that is our aspiration.
वर्णाश्रम की स्थिति के अनुसार शायद हम इस समय नहीं कर सके लेकिन ये हमारी अभिलाषा होनी चाहिए.
And we, it may be a gradual process to come to that realization, but that is what we want.
चाहे वो एक धीरे-धीरे तरीका हो लेकिन हमारी ये इच्छा होनी चाहिए.
Such a person can understand what is bhakti and make real progress.
ऐसा व्यक्ति समझ सकता है कि भक्ति क्या है और वो प्रगति कर सकता है.
There are people within the Krishna consciousness movement that even after many, many, many years, they do not make proper spiritual progress.
और कई लोग ऐसे हैं कृष्ण भावना अमृत में जो कि कई कई वर्षों के बाद भी प्रगति नहीं कर पाते.
It is getting late, but I will end the class with one beautiful story that Srila Bhakti Siddhanta Saraswati had told.
समय हो रहा है लेकिन मैं प्रवचन का अंत एक सुंदर कथा जो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे.
There was a wedding procession.
एक शादी का समारोह था.
The bridegroom or future husband's family and village was going to go to the village of the bride where the marriage was to take place.
जो होने वाला पति था वो उस तरफ जा रहा था जहाँ पर वो पत्नी के पास.
The auspicious time was early in the morning.
और जो मंगलकारी जो समय था शुभ मुहूर्त वो सुबह का था.
The evening before they came to cross the river.
और पहले उसके पहले वाली शाम को वो नदी के पास आए पार करने के लिए.
They boarded the boat.
और वो नौका में बैठे.
They said to the boatman, "We must arrive early next morning."
उन्होंने नाविक से कहा कि हमें अगले सवेरे पहुंचना जरूरी है.
He said, "Certainly, you have faith. You just go to sleep. I know this river. I have done it so many times."
उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप सो जाइए. मैं कई बार कर चुका हूँ, मैं पहुंचा दूँ.
They all went to sleep.
वो सब सो गए.
And the boatman rowed all night long.
और वो नाविक जो है पूरे रात प्रयास करता रहा.
He rowed and rowed and rowed.
और वो पूरा समय प्रयास करता रहा.
Then the sun rose.
और सुबह सूर्योदय हुआ.
Then people of the boat started waking up.
और लोग के गांव नाव के लोग जो है जागने लगे.
One person looked around and he said, "What is this? We're in the same place we were last night."
एक व्यक्ति जो उठा और कहने लगा तो वही है जहां पर पहले थे.
The boatman said, "Not possible. I've been rowing all night."
तो नाविक कहने लगा नहीं मैं तो पूरे रात चलाता रहा हूँ.
But look, we've gotten nowhere.
कि दूसरे लोग बोले हम तो कहीं आगे नहीं बढ़े.
Someone noticed he forgot to take up the anchor holding the boat down.
और किसी ने देखा कि जो ये लंगर है उसने निकाला नहीं था.
So Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur explains that we can approach Krishna consciousness and even practice Krishna consciousness, but if our attachments and our motives are not proper, we do not go anywhere.
Srila Bhakti Siddhanta Thakur batate hain ki hum Krishna bhavana ke bhi andolan mein bhag bhi le sakte hain, lekin agar hamare irade theek nahi hai to hum aage nahi badhenge.
So we must very, each and every one of us, take very seriously that we must examine the content of our hearts.
हमें से हर एक व्यक्ति को अपने हृदय की परीक्षा करनी चाहिए.
We must take inventory of our motivations and desires in life.
हमें देखना चाहिए कि हमारे इरादे और हमारी इच्छाएं क्या हैं जीवन में.
If we actually want Krishna consciousness, we must give up our ulterior motives and become genuinely sincere in aspiring for real devotional service.
अगर हम वास्तव में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें अपने जो दूसरे इरादे हैं उनको निकालना चाहिए.
We must search to see where that anchor may be within our own hearts.
हमें अपने हृदय में देखना चाहिए कहां पर वो लंगर जो है लगा हुआ है.
We have to pull that anchor up.
हमें उसको निकालना चाहिए.
Otherwise years will pass and we find out I've gotten nowhere.
नहीं तो कई वर्ष बीत जाएंगे और हम देखेंगे मैं आगे नहीं बढ़ पाया.
Krishna consciousness is a great science.
Krishna bhavna ek bahut bada vigyan hai.
We must follow it properly.
Hame usko sachi tarah se uska palan karna chahiye.
This is the sum and substance of this very instructive verse.
Ye jo hai aaj ke jo shlok hai uska saar hai.
Kapila Dev says, don't even instruct people who are too much attached to these anarthas.
Kapila Dev bata rahe hain ki aise vyakti jo anarthon ke prati aasakt hai unko ye udesh nahi karna chahiye.
Actually, anarthas with a desire for sense gratification is in everyone's heart, but we have to have a genuinely sincere desire to give it up.
हमारे सबके अंदर अनर्थ हैं, लेकिन हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए इन सब का त्याग करने की.
And we must be humble.
और हमें नम्र रहना चाहिए.
In our Krishna consciousness movement, we are giving Krishna bhakti to everyone without discrimination.
हमारे कृष्ण भावना आंदोलन में हम सबको बिना भेद के भक्ति देते हैं.
However, when we see a person is too much addicted to these ulterior motives and this artificial, superficial approach, then we give them Harinam, we give them Prasad, but we don't want to go much deeper into Krishna conscious understanding simply because we waste our time.
लेकिन अगर हम देखते हैं कि ऐसे कोई व्यक्ति है जिसके दूसरे इरादे हैं तो उनको हरिनाम और प्रसाद दे सकते हैं लेकिन ज़्यादा उपदेश नहीं करना है क्योंकि समय की बर्बादी है.
So do not be Vyomasura.
तो इसलिए व्योमासुर मत बनिए.
In the guise of a devotee.
एक भक्त के रूप में.
Wanting to steal from Krishna.
कृष्ण से चुराने की इच्छा से.
Be honest and sincere.
सच्चे दिल से प्रयास.
Be simple.
सरल रहिए.
What is the greatest enemy to our movement?
हमारे आंदोलन का सबसे बड़ा शत्रु क्या है?
Internal politics.
जो अंतरंग राजनीति है.
Where there's internal politics, that means there's ulterior motives.
जहाँ पर अंतरंग राजनीति है मतलब किसी के दूसरे इरादे हैं.
It's destroying us individually and it's destroying us collectively.
हमें व्यक्तिगत रूप से इसका नाश हो जाएगा और पूर्ण रूप से भी इसका नाश हो जाएगा.
Just be simple.
बिल्कुल सरल रहिए.
Humble.
नम्र.
With a desire to serve.
और सेवा भावना से.
And we will all go back home, back to Godhead.
और फिर हम वापस भगवान के धाम जा सकते.
Thank you very much.
बहुत बहुत धन्यवाद.
हरे कृष्ण. Is there any questions?
किसी को कोई प्रश्न है?
One is what could be the subtle reasons for becoming proud? Sorry.
What are the subtle reasons for becoming proud?
Say especially Krishna. From a Krishna conscious point of view. Subtle reasons.
When we want to enjoy rather than want to serve, then we are subject to false pride.
जब हम भोग करना चाहते हैं सेवा करने के बजाय तो हम मिथ्या अभिमान से आसक्त हो जाते हैं.
हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. Is that microphone on? I cannot hear.
What about the people who are not able to follow instructions of Guru Maharaj due to extreme circumstances or something like that, and those who are stumbling again and again due falling prey to Maya? What's the way out for them?
इनका प्रश्न ये है कि ऐसे व्यक्ति है क्या जो कि बार-बार जो है गिर रहे हैं और आज्ञा पालन नहीं कर पा रहे?
If one is honestly and sincerely trying, then that person will make spiritual progress.
अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से प्रयास कर रहा है तो वो प्रगति करेगा.
However many times that person may stumble.
चाहे वो कितनी बार गिर पड़े.
If one is humble and sincere and honest, Krishna will keep picking you up.
अगर आप नम्र हैं तो कृष्णा को फिर से उठाते रहेंगे.
Until ultimately you will not stumble.
अंततः आप फिर नहीं गिरेंगे.
And if due to extreme circumstances it's very difficult, but you are honestly, sincerely trying with proper motives, then Krishna will save you.
लेकिन अगर आप प्रयास कर रहे हैं और फिर किसी स्थिति के कारण नहीं कर पा रहे तो फिर अंत में कृष्ण आपको बचाएंगे.
Krishna is in your heart.
कृष्ण आपके हृदय में है.
हरे कृष्ण. Yes, Nartaki, Srimati Nartaki Devi Mataji. Microphone is just coming.
Maharaj, I wanted to ask you, I have noticed sometimes in Krishna consciousness, when the devotees have been longer time in Krishna consciousness, then no one wants to correct them, even if they sometimes ask for it. Mm. And also in other instances I've seen younger or older devotees, they don't want to correct others, maybe out of their own humility or something, but maybe also they will feel that person already knows everything, time will correct them, something will happen by Krishna's invention that they will be corrected and they will see for themselves what can be done in these instances.
Inka prashna ye hai ki kai bar jo kai varshon se Krishna bhakti mein hote hain unko koi vyakti sudharna nahi chahta ye soch ke ki Krishna hi unko correct kar denge aur aise vyakti ka kya sthiti hai.
Hare Krishna. If a person is not willing to be corrected due to some sense of seniority, then ultimately Krishna will correct him.
Agar koi vyakti sudhar karne ke liye tayar nahi hai to antatah Krishna uska sudhar karenge.
It's much easier when you accept correction from the devotees.
लेकिन बहुत ज्यादा सरल है अगर आप भक्तों से सुधार स्वीकार कर ले.
Devotees just say, प्रभु माताजी प्लीज बी लाइक दिस.
ये कहना प्रभु माताजी इस तरह से आप रहिए.
एंड इफ वी से थैंक यू वेरी मच समहाउ और अदर आई लॉस्ट ट्रैक.
और अगर हम कहते हैं बहुत धन्यवाद मैं रास्ता भूल गया था.
आई विल ट्राई.
मैं प्रयास करूंगा.
लिटिल डिफिकल्ट.
वो थोड़ा सा ही मुश्किल है.
बट इफ यू डू नॉट टेक दैट एडवाइस देन कृष्णा हैज टू कम एंड करेक्ट यू.
लेकिन अगर आप उस सलाह को नहीं स्वीकार करते तो फिर कृष्णा को आना पड़ता है.
एंड समटाइम्स व्हेन एक्चुअली कृष्णा इज करेक्टिंग यू थ्रू द डिवोटीज.
वास्तव में कृष्णा भक्तों के द्वारा आपको सुधार रहे हैं.
इफ यू आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट रिलेटिवली जेंटल करेक्शन.
लेकिन अगर आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं,
द थंडरबोल्ट,
तो फिर वो वज्र का प्रहार होता है.
वेरी डिफिकल्ट.
वो बहुत मुश्किल है.
Now, we may think that a person is a very senior devotee and who am I to correct that person?
हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये तो बहुत वरिष्ठ है मेरे से, इसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ?
But if we're actually in the mood of service, if we see that a person is living in such a way that is contrary to his own or her own spiritual interest, a servant tries to help.
अगर हम इस भावना में हैं कि मैं सेवक हूँ और ये व्यक्ति जो है गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो एक सेवक प्रयास करता है उसको मदद करने का.
We should not criticize.
हमें निंदा नहीं करनी चाहिए.
Or gossip behind that person's back.
और उसके पीठ के पीछे प्रजल्प नहीं करना चाहिए.
But rather we can in a very respectful and humble way present our concerns.
लेकिन बिल्कुल नम्र भावना से हमें अपने विचार पेश करने चाहिए.
Or we can approach someone who is equal to that person who can try to speak to them.
और हम उस व्यक्ति के पास जा सकते हैं जो कि उसके बराबर का है.
But the great benediction of having a society of devotees is devotees are willing to help each other.
और भक्तों के संघ का यही लाभ है कि भक्त एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं.
If we are isolated from each other, then we are in a very dangerous situation.
और अगर हम अलग हो जाते हैं सबसे भक्तों से तो बहुत खतरनाक स्थिति है.
And if being in a high position isolates you from others,
और एक ऊंची पदवी प्राप्त करना आपको दूसरों से अलग कर देती है.
It
It's better to stay in a low position.
ज़्यादा अच्छा है निम्न स्थिति को स्वीकार करना.
That has happened. People become so big and big in their seniority that they're isolated from everyone.
ऐसा होता है कि लोग इतने ज़्यादा वरिष्ठ हो जाते हैं कि सबसे अलग हो जाते हैं.
Therefore, however advanced we may become in our position in Krishna consciousness, we must always have intimate friendships with peers.
हम कितने ज़्यादा कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ें हमारे अंदर घनिष्ठ मित्रता होनी चाहिए अपने बराबरी के लोगों से.
And we should always be willing to accept guidance and instructions from other Vaishnavas.
और दूसरे वैष्णवों से हमें मार्गदर्शन और शिक्षा लेने के लिए तैयार रहना चाहिए.
If we think we're above that, we are swimming in shark infested dangerous waters.
और अगर हम सोचते हैं कि हम इससे ऊपर हैं तो हम एक खतरनाक पानी में तैर रहे हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े शार्क्स हैं.
Does that answer your question? Hare Krishna. So I think we have another program.
You will.
Thank you for tolerating me.
One more question, please.
Huh?
The last question.
Where is this voice coming? Celestial sound from the sky. Yes.
Okay, Krishna is the ultimate God. He controls your mind, he controls your thoughts. He is the main control of Maya. Then why such a lot of misery in the world? Why such a big process?
Such a big process?
Yeah. Why people struggle so much?
प्रश्न यह है कि कृष्ण ही अगर सब चीज़ों के ईश्वर हैं तो क्यों लोगों को दुख भोगना पड़ता है, क्यों ये सब चीज़ें हैं, क्यों इतना मुश्किल तरीका.
Because it is a very simple answer.
ये एक बहुत ही सुंदर सरल उत्तर है.
If we just follow Krishna's teachings, there's no more suffering.
अगर हम कृष्ण की शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं तो कोई दुख नहीं रहता.
But if we betray or disobey Krishna's teachings, there will be too much suffering.
लेकिन अगर हम आज्ञा पालन नहीं करते तो हमें बहुत दुख भोगना पड़ेगा.
In Belgaum, is there a prison house?
बेलगाम में जेल है क्या?
Why are you not in the prison house?
आप उसमें जेल में क्यों नहीं हैं?
I haven't committed any crime.
Really?
क्योंकि मैंने कोई बुरा कार्य नहीं.
Either that or you have not yet get caught.
या तो ये है या पकड़े नहीं गए.
But we will hypothetically accept your first answer.
हम सिर्फ विचार के लिए पहला उत्तर आपका स्वीकार करते हैं.
You have not committed any crime.
कि आपने कोई दोष नहीं किया है.
So are you suffering in the prison house?
क्या आप जेल में दुख भोग रहे हैं?
Because you have not committed crime. Now those who are in the prison house, they have committed crime.
जो जेल में हैं, उन्होंने क्या कोई अपराध किया है?
So if someone in the prison house says, if the government is so good, then what am I doing here?
कोई व्यक्ति कह सकता है जो जेल में है कि अगर सरकार इतनी अच्छी है, तो मैं यहाँ पर क्यों हूँ ऐसा?
Because you have rejected the laws of the government.
क्योंकि आपने सरकार के नियमों का अवलंघन किया है.
Very simple.
बहुत सरल.
This material world is prison.
ये भौतिक दुनिया जो है एक जेल है.
If we reject the laws of the spiritual world, we come to this material world.
अगर हम आध्यात्मिक दुनिया के नियमों का पालन नहीं करते तो हम इस भौतिक जगत में आते हैं.
And when we wholeheartedly accept those laws, then we are released from this prison of material existence.
और अगर हम सच्चे दिल से उन नियमों को स्वीकार करते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं जेल से.
In this age of Kali Yuga, by associating with devotees, by living a humble and honest life, and chanting the names of God, we can be delivered from this prison house.
इस कलयुग में भक्तों का संग करने से, एक सरल ईमानदार जीवन बिताने से और भगवान का नाम कीर्तन करने से हम जेल से मुक्त हो सकते हैं.
And come to that free, blissful home of the spiritual world.
और आनंददायक जीवन जो आध्यात्मिक जगत है उसमें प्रवेश कर सकते हैं.
The means is the chanting of God's name.
और वो तरीका है भगवान के पवित्र नामों का गान.
So let us chant Hare Krishna and be happy.
तो हम हरे कृष्णा गाएं और सुखी हों.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
श्रील प्रभुपाद की. थैंक यू वेरी मच.
जय जय राधा स्वामी महाराज की. जय.
Hare Krishna, please return that mic, wireless mic. Hare Krishna. Today evening, there is yagya at 4:30. What time is the yagya? 4 o'clock. Four. And pandal program begins at 6:30. And tomorrow morning, His Holiness Radhanath Maharaj will be giving Srimad Bhagavatam class also. So everybody is requested to please take advantage of this divine association. Hare Krishna. My bid. Hare Krishna.
This is Sri Chaitanya Mahaprabhu, who in his wonderful stage life performed Nawab Hussein Shah. It is also his birthday, and he was born in Belgaum. Today is Sri Chaitanya Prabhu's birthday, and he was born in Belgaum. He is one of the ripened fruits of the soil of Belgaum. Everyone, please offer your prayers for Krishna's blessings by loudly saying Hari Bol. Would you like to speak something? Hari Bol.